श्रावण शुक्ला चतुर्थी है और महान वैष्णव रघुनंदन ठाकुर की तिरुभाव तिथि और बंशीदास बाबा जी की। तो रघुनंदन ठाकुर ऐसे अद्भुत वैष्णव है जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया था कि आपके प्रतिज्ञा तोड़वा दूंगा, भगवान के भी प्रतिज्ञा उनकी धर्म को तोड़वा दिया, क्योंकि विग्रह की धर्म नहीं है कि विग्रह खाना है, लेकिन ऐसे उनके प्रयास, ऐसे प्रार्थना, ऐसे उनका रोना, उनकी ऐसे विशुद्ध प्रेम, जिस प्रेम के वश में होकर प्रभु ने अपने विग्रह धर्म छोड़ दिया। विग्रह चलते नहीं, बोलते नहीं, खाते पीते नहीं हैं, तो दिव्य रूप में हैं, लेकिन उसको छोड़ दिया, अपने धर्म को छोड़ के रघुनंदन जी की प्रेम में वशीभूत होकर उन्होंने प्रसाद पाया, भोग पाया। तो आज उस रघुनंदन जी की तिरुभाव तिथि है। खंडेर मुकुंददार शिरोगुणंदन श्रीनरो हरि एई मुख्य तीन जन खंडवासी वैष्णव अलग अलग है। ये खंडवासी है, पुलिंगवासी है, शांतिपुरवासी है, अलग अलग क्षेत्र की पानीहट्टी की वैष्णव, अलग अलग वैष्णव की ये है। तो ये खंडवासी वैष्णव है और भी चिरंजीवी और सुलोचन भी है, लेकिन मुख्य तीन जन। तो श्री श्रीखंड के वैष्णव मुकुंददास, श्री रघुनंदन और श्री नरहरि एक ही परिवार से है। पिता नारायण देव है और माता मुकुंद की, पिता नारायण है और माता गौरी देवी। इन कुल परंपरा में गोपीनाथ जी की सेवा होती थी, गोपीनाथ जी सेवा करते थे। उनके दो पुत्र, लेकिन कई कई जगह बताते उनके तीन पुत्र थे, लेकिन वो किसी में बताते कि बचपन में वो देहांत हो गए, इसलिए दो पुत्र का उल्लेख है। एक बड़े है मुकुंद, छोटे है नरहरि सरकार। ये जो आयुर्वेदिक कविराज है, इस जाति के हैं, कविराज वैद्य परिवार से, और वही अपने बिजनेस जो करते थे कविराजी करना, और कोवि भी थे। ऐसे जो लिखते पद्यवादि लिखते वो भी कवि हैं, जैसे कवि कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये भी वैद्य परिवार से थे, दोनों ओर से कविराज है, इसलिए दवाई जो है ठीक से काम करेगा पूरा। भवरोग और ये शारीरिक रोग, दोनों रोगों का डॉक्टर है कृष्णदास कविराज। तो ये वैद्य परिवार से हैं, लेकिन नरहरि मुकुंद से 8-10 साल छोटे हैं। मुकुंद बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, सरकार मुगल सरकार जो तभी हुसैन शाह थे, हुसैन शाह ने जान गया कि ये बड़े डॉक्टर है, तो अपने घर के चिकित्सक बोल के उन्हें बंगाल गौरनगर मुर्शिदाबाद की ओर ले गए उनको। और वो जाने के कुछ दिन बाद ही उनके पिता की देहांत हो गया, मुकुंद की नारायण। मुकुंद फिर घर आए, अपने परिवार की पूरा दायित्व जो है अपने ऊपर आया, और नरहरि को नवद्वीप में भेज दिया। नवद्वीप बड़े शिक्षा केंद्र थे उसी समय, तो नवद्वीप में नरहरि को एडमिट कर दिया गुरुकुल में, और फिर मुकुंद अपने कार्य के लिए चले गए। नरहरि बचपन से लिखने में उनका यह था, राधा कृष्ण की लीला, बहुत सारी लीलाओं को उन्होंने लिखे पहले ही, और मुकुंद उधर जाके डॉक्टर बन गए। तो नरहरि कुछ दिन बाद स्वप्न में देखा, महाप्रभु तब अध्ययन लीला में थे नवद्वीप में, कुछ दिन बाद स्वप्न देखा महाप्रभु जी के दिव्य रूप में दर्शन किए, तो उन्होंने फिर उनके दर्शन के लिए लालायित हो गए। तो ऐसे करके एक दिन गंगा के तट पे बैठे थे, इसी समय चैतन्य महाप्रभु दर्शन हुआ। दर्शन होकर उन्होंने मन ही मन बोलने लगा, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मिल गया। तो महाप्रभु से, तब से महाप्रभु के संग में रहने लगे, बहुत आनंद से अपना दिन अतिवाहित करते रहे महाप्रभु के साथ ही। भी लेकिन मन में एक खेद था, यदि मुकुंद भी आ जाता मेरे बड़े भाई तो वो भी महाप्रभु जी के दर्शन कर लेते हैं। और मुकुंद की भी ऐसे कृष्ण में उनका मन निविष्ट था, जो कि एक दिन की बात है, सुबह सुबह राजा एक ऊंचे स्थान में बैठे थे, इसी समय मुकुंद कुछ उनके हेल्थ के बारे में पूछ रहे थे। इसी समय सूर्य उदय हो गया, एक बड़े मोरपूछ से बनाए हुए पंख जैसे राजा के पीछे लगे लगा दिए, धूप ना गिरे राजा के मुस्लिम सम्राट के ऊपर। इसको दर्श देखते मोर पंख देखते हुए ही तुरंत मुकुंद ऊंचा ऊपर से गिर पड़ा मूर्छित होके। तुरंत राजा देखा, राजा भी तुरंत नीचे उतर गया, उतर के उनको सुस्त किया। फिर जब उनको मूर्छा टूटा तो उन्होंने पूछा, तुम क्यों गिरा क्यों? महाराज मेरा मिर्गी व्याधि है। भक्त लोग जो है अपने भाव को छुपाते हैं। वैष्णवेर एक सहज स्वभाव यही है, आपनार गुण नहीं आपनी कहाय। तो वैष्णव के एक सहज गुण है कि अपने को प्रकट नहीं करते, अपने को छुपाते हैं, छुपाते हैं। आप लोग देखेंगे हरिदास ठाकुर, रूप सनातन आदि जिंदगी भर अपने को छोटे ही बताते गए, एकदम तृण से हीन। तो उन्होंने छुपा दिया और वो समझेगा भी नहीं, इसलिए अपने इतना दिव्य भाव ज्योष्ठ सात्विक भाव है इसको भी उनको चीटिंग कर दिया, सिपा दिया, बोला मेरा मिर्गी व्याधि है। लेकिन राजा भी महाविदग्ध थे, वो भी समझ गए ये कोई साधारण ऐसी मिर्गी व्याधि नहीं है, इसमें कोई विशेष लक्षण है। इसके बाद मुकुंद की और राजकार्य इतना अच्छा नहीं लगा, राजा से प्रार्थना की मेरे से और एक कार्य होगा नहीं, अब मैं नकली इस्तीफा दे के मैं जा रहा हूँ। तो घर वापस आ रहे थे, आते हुए उन्होंने सोचा, मन ही मन सोच लिए कि मैं पहले नरहरी से मिलता हूँ, इसके बाद मैं घर जाऊँगा। 15-20 किलोमीटर होगा, 25-30 किलोमीटर होगा नवद्वीप से उनके घर। तो आके मिला नरहरी से, नरहरी भी सोच रहे थे कि आ गए आना चाहिए उनको महापुरुष से। तो दोनों भाई महापुरुष से मिले और दोनों भाई नवद्वीप में रहने लगे, महापुरुष के साथ आनंद में काल अतिवाहित करने लगे। और बीच बीच में जाके अपने इष्टदेव गोपीनाथ जी की सेवा की देखभाल करते थे, उससे सेवा के लिए किसी को नियुक्त कर दिया, बीच में जाके दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन महापुरुष के साथ रहे। हठात महाप्रभु ने एक दिन बता दिया, मुकुंद एक बात है, तुमको शादी करना है। दोनों तुरंत इस बात को श्रवण करके मुकुंद ने स्तब्धित हो गया और मन ही मन दोनों भाई सोच रहे थे कि हम लोग आकुमार ब्रह्मचारी रहकर चैतन्य महाप्रभु सेवा करेंगे। लेकिन जब उनको बोला आपको शादी करना है, तब वो तो रोने लगे। महाप्रभु चरण कमल के पकड़ के बताते हैं, प्रभु मैं तो ऐसे ही संकल्प किया था, तो मेरा शादी करने का उम्र जो है पार हो गया, इष्कुंड में जैसे हाल होते हैं 50 साल में 45 साल में शादी करना। तो बोला मेरा जो शादी करने का उम्र है पार हो चुका है, तुम मेरे छोटो छोटा है नरहरी 8-9 साल की, इनको शादी दीजिए। बोला नहीं, मैं नरहरी को नहीं बताया, मैं तुमको बताया, और तुम्हारा जो पुत्र होगा ये मेरे कामदेव के अवतार रुकंदर को अवतार रूप में जन्म लेंगे, इसलिए तुमको गृहस्थ बनना पड़ेगा। तो महाप्रभु की, जैसे आप लोग जानते हैं प्रभुपाद जी भी जिसको जो बोलते थे उसको ही करना ही पड़ेगा, तो ऐसे ही महाप्रभु जब बोल दिया तो उनको और टलना टलम टलम नहीं कर सकते हैं। तो बोला देखो तुम्हें, मुझे पता है कि तुम स्त्री के प्रति आसक्त तो नहीं हो, लेकिन एक महाकार्यों सिद्ध करने के लिए तुमको उसके शिकार करना पड़ेगा। तभी मुकुंद महाप्रभु की ऐसी आज्ञा है, तो मुकुंद ने शिकार कर लिए और महाप्रभु से आज्ञा लेके अपने गांव की ओर चले। बहुत दुख हो रहा था, एक एक कदम को नवद्वीप मंडल को छोड़ के जा रहे थे, उनके हृदय में महापीड़ा हो रही थी, लेकिन फिर भी महाप्रभु की आज्ञा है, यही जीवन होना चाहिए भक्तों की। रूप सनातन से जब मिले, रूप गोस्वामी से जब प्रयाग में मिले, उन्होंने बताया प्रभु मैं आपके साथ में चलूं। महाप्रभु ने बताया तुम्हारो कर्तव्य जमार आज्ञा रो पालन, निकटे आसिया तुम जाओ वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु जी रूप जब ऐसे प्रार्थना किया प्रभु मैं आपके साथ में चलूं, बोला नहीं तुम्हारा कर्तव्य क्या है, मेरी आज्ञा को पालन करना, यही भक्त की जीवन होना है। भक्त की जीवन यही है कि गुरु गौरंग के आज्ञा को पालन करके अपने जीवन को आगे जाना, यही जीवन है। तो तुम्हारा कर्तव्य मेरी आज्ञा के पालन करना। तो ऐसे ही उन्होंने गए अपने श्रीखंड के, श्रीखंड से थोड़ी दूर है बरडंगा, बरडंगा एक बहुत बड़े बरगद के वृक्ष है, उधर जाके गांव से बाहर एकांत स्थान में कुटिया बना लिया, कुटिया में रहते थे, भजन करते थे दिन भर, और जब जब सेवा करने का अवसर होता 1.5 किलोमीटर दूर है अपने गांव, उधर सेवा करके आ जाते थे ठाकुर जी के। महाप्रभु ये भी बताया था कि तुमको शादी करने के लिए कोई प्रयास किसी के पास जाना जरूरत नहीं है, सब व्यवस्था मैं ही किसी को भेज दूंगा। तो ऐसे दिन अतिवाहित कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा करना और भजन करना है। ऐसे करते करते एक व्यक्ति एक दिन आ गया, कुछ बातचीत किया, बातचीत करने के बाद बताया कि मेरी एक बेटी है जो शादी देने के लायक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके शादी उनको शादी दिलवा दूँ। तो मुकुंद समझ गए यही महाप्रभु के सब प्लान है, मुकुंद भी राजी हो गए, तो उनको शादी हो गया। फिर आके उन्होंने गांव में रहने लगे, ठाकुर जी की सेवा करते थे, अतिथि की सेवा करते थे, यही उनकी कार्यों था। ठाकुर जी की सेवा करके जब प्रसाद लेने का समय होता था उसी समय द्वार में जाके बोलते थे कोई भूखा तो नहीं है, नहीं टिकट लेके आओ, कूपन भी ना चलेंगे नहीं, तो ऐसे चिल्लाते थे कि आ जाओ कोई भूखा तो नहीं है, तो उसको कोई यदि है तो उनको खिला के बाद में प्रसाद पाते थे। ये पहले का नियम था कि ऐसे ही सेवा करना है। आप लोग जानते हैं महाप्रभु बीच बीच सन्यासी को बुलाते थे, शौची माँ सोचती थी मन ही मन बोलते थे कुछ भी घर पे नहीं है, नहीं मैं इतना लोगों को बुला के लाया, तो इसी समय सोचते ही कोई ना कोई सामान लेके आ जाते थे। तो ऐसे ही सेवा करते थे। नरहरी कभी कभी भी श्रीखंड में आते थे। तो इसी प्रकार उनके पत्नी के गर्भ हो गए और उनमें उनके जो बसंत पंचमी के दिन जो विष्णु प्रिया देवी के जन्मदिन है, तो इस पावन अवसर पर श्री रघुनंदन के जन्मदिन है। जन्म बचपन से ही छोटे से बड़े आनंदोत्सव मनाए, लेकिन बचपन से बच्चे जब भी थोड़ा बहुत सीखना सीखा, खेलना शुरू किया, लेकिन दूसरी खेल कभी नहीं खेलते थे, केवल बच्चे भगवान की साथ खेलना, पिताजी क्या करते हैं, चाचा जी क्या करते हैं, इसको देख के उसको अनुकरण की खेल खेलते थे। तो भागवत कुछ भी पता नहीं, एक व्यासाश्रम में दूसरे बच्चे को बुला के व्यासाश्रम में बैठ के प्रवचन करते थे, दो भी जो भी एक दो शब्द सुनते थे मुकुंदादी नरहरी से उसको बोल दोहराते थे, वो पूजा करते, उसके बाद गायत्री करना, कुछ भी पता नहीं, लेकिन ऐसे एक्टम करते थे बच्चा। तो ऐसे अनुकरण और क्या करते थे, थोड़ा बड़े हो गए तो गांव में घूम के देखते थे, कहाँ अच्छा फूल है, कहाँ अच्छा तुलसी पत्ता है, तो उसको सुबह सुबह उठते थे और जाके उसको फूल आदि को लेके आते थे, लेके ठाकुर गोपीनाथ जी को देते थे, और तुरंत नहा धो के पिताजी सेवा करते थे, और उस पास में बहुत ही ध्यान मग्न होकर दर्शन करते थे कांत मन से, और कहीं नहीं जाते थे। हर दिन की ये नियम है कि वो पिताजी के साथ नहा धो के आकर ठाकुर जी की सेवा को दर्शन करते थे बार बार। ऐसे करते करते इनका लगा लगन को देखा, कभी कभी व्यासाश्रम में प्रवचन करते करते मूर्छित हो जाते थे। ऐसे ही रघुनंदन मुकुंद थोड़ा जब पाँच छः साल की हो गए, तो मुकुंद ने सोच लिया कि मेरे कोई बाहर जो भी जाना पड़ता है, अर्जन सीरियस मरीज आ गया तो मुझे जाना पड़ता है, इसलिए ये रघुनंदन तब संभाल लेगा। रघुनंदन सेवा समाज लिया गोपीनाथ की। एक दिन ऐसे ही अचानक रघुनंदन जी दर्शन कर रहे थे, इसी समय पिताजी ने बताया, रघुनंदन तुम्हारा गोपीनाथ की सेवा तुम काल अपने हाथों से करोगे, इस बात को जब उनके कर्ण कुहर में प्रवेश हुआ तो वो तो आनंद से आत्महारा हो गया कि काल मैं गोपीनाथ जी की सेवा मैं स्वयं करूंगा, और बहुत ही आनंदित हो गया। उनका दिन रात बहुत लंबा हो गया कि कब वो समय आएगा मैं सेवा करूंगा, इसके लिए बार बार उनकी चिंतन होती थी, लंबा दिन बहुत लंबा हो रहे थे, प्लान बना रहे थे अंदर कैसे करूंगा कैसे, सभी प्लान बनाते, रात को उनके नींद बिल्कुल बार बार उठते थे, तो माँ बताती थी नहीं अभी भी बहुत रात है। तो ऐसे करके सुबह सुबह जग गए और तुरंत नहा धो के पिताजी चले गए, और उन्होंने जाके फूल आदि सब लेके आया, और माताजी पूरा स्नान की जो थाली है और भोगों की थाली सब बना दी, सब पूरा तैयार करके दे दिया। रघुनंदन जी घंटी बजा के अंदर प्रवेश कर दिए, ठाकुर जी को उठाए और उनको पिताजी जैसे स्नान कराते थे, मंत्र वगैरह कुछ नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने वो सुंदर ढंग से ठाकुर जी को स्नान आदि कराना, उनको वस्त्र धारण कराना, चंदन तुलसी लगाना, और उनके आभूषण आदि माला आदि पहना के अभी इसके बाद भोग लगाना पड़ता है। षड़श उपचार में है, पहले उनको सुस्वागतम, फिर उनको पादम देना है, फिर उनको अर्घ्य देना है, फिर उनको आचमन देना है, मधुपर्क देना है, फिर पुनाचमन देना है, तेल आदि लगाना है, उनको मुख छाप करना है, फिर इनको स्नान करा के सुखा के वस्त्र पहना के फिर पुष्प गंध पुष्प आदि देकर फिर धूप दीप से पूजा, थोड़ा सा पूजा होता है धूप और दीप, इसके बाद नैवेद्य, तो ऐसे पूरा कार्य किया प्रे आनंद के साथ। और पिताजी को बताया था कि अच्छा कर खिलाना, अच्छा से गोपीनाथ जी को खिलाना, तो जब ही बताया तो भोग लगाने के लिए भोग दिया, बड़े प्रेम से, बंगला में शब्द है खाओ खाओ ठाकुर खाओ, तो मंत्र ही है, क्या मंत्र है, इदम नैवेद्यम नहीं, इदम नैवेद्यम ना, खाओ खाओ भगवान, खा लो ठाकुर जी, गोपीनाथ जी खा लो, ऐसे प्रेम से बताया। अभी पिताजी बता दिया खिलाना, अच्छा से खिलाना, लेकिन भगवान तो खाते हैं, आंखों से खाते हैं, तो ऐसे खिलाते हैं। तो क्योंकि रघुनंदन की पूजा की तो पूरा उनको जानकारी था, लेकिन भोग लगाते समय क्या है, वो पिताजी शायद बंद करके जाते थे, इसलिए उनको खाते कि नहीं, तो बोले अच्छा से खिलाना था। अभी जब दिया अब खाते नहीं हैं, फिर बार बार भगवान से प्रार्थना कर खाइए खाइए ठाकुर जी खाइए, ये है। और लोभ दिखा रहा है कि देखिए ये मीठा है, ये सुरप्राइज है, ये अच्छा फल है, देखिए माता जी कितना अच्छा से सजा दिया, खाओ खाइए खाइए, ऐसे बार बार बोलने के बाद भगवान तो खा लिया, लेकिन ये बच्चे हैं, बच्चे हैं, अभी क्या करेंगे, बच्चे के सामने अभी तो खाया नहीं भगवान, देखा नहीं, बिल्कुल नहीं हिला नहीं, कुछ नहीं, जो भी जैसे रखा है तुलसी पत्ता भी हिला नहीं, तो क्या करेंगे, खाया ही नहीं। तब बोलने लगे, आप पिताजी से खाते, मेरे हाथ से नहीं खाएंगे, मैं पिताजी आके बोल दूंगा, पिताजी आने से बोल दूंगा कि पिताजी आपके गोपीनाथ आपके हाथ से ही खाते हैं, मेरे हाथ से खाते नहीं हैं, ऐसे करके बहुत प्रार्थना किया, फिर डराया भगवान को, देखो आप, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, आप मुझे बिल्कुल प्रेम नहीं करते हो, ठीक है, और तुम ऐसे करोगे तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, आऊंगा तुम अकेला रहोगे, कौन तुमको भजन सुनाएगा, कौन ये सब चीज लाके देगा। ऐसे भगवान के डराया, भगवान ठाकुर जी को डराया, फिर भी नहीं खाया। तो फिर ऐसे करके बहुत रोने लगा, फुट फुट करके रोने लगा, खा नहीं रहे भगवान। तभी उठ के बहुत ही दुख हो गया, बहुत ही ये हो गया, तो जा रहे थे उठकर जा रहे थे, जाते समय देखा भगवान मुस्कुराया और अपने धर्मों को त्याग कर दिया, विग्रह धर्मों जो है त्याग करके उन्होंने आकर बैठ गए, प्लेट के सामने बैठकर खाने लगा। तो वो बड़े प्रसन्न हो गया और खाते 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 प्लेट से पूरा एकदम छवाया कर दिया, छवाया करके पूरा पानी यानी पी लिया और खाली प्लेट लेकर आ गया। तो माताजी बताई, अरे तेरा पिताजी हर दिन प्रसाद लेके आता था, तो कुछ भी नहीं लाया, बोला भगवान सब कुछ खा गया, मैं क्या लेके आऊं। तो ऐसे करके मुकुंद आया, मुकुंद का नियम था कि महाप्रसाद के पानी के अलावा पानी भी नहीं पीते हैं, पानी भी महा भगवान के अफरिंग किए हो पानी। बार बार श्रील प्रभुपाद जी हमले के समझाते हैं कि हमें महाप्रसाद के अलावा कुछ खाना नहीं चाहिए, प्रसाद ही खाना चाहिए। तो पानी तो हमारा फेंक देते हैं इधर, कभी कभी कोई लेते हैं कोई फेंक ही देते हैं, तो पानी भी नहीं पीते थे दूसरे पानी, महापानी। तो मुकुंद कुछ समय बाद लौट के आया 10-11 बजे, तो पूछा रघु, प्रेम से उनको रघुनंदन को बोलते थे रघु प्रसाद लेके आओ पानी लेके आओ। तो पिताजी से बोला प्रभु पिताजी सब कुछ भगवान खा गए। अरे खा गए कैसे खा गया, हम बोला पूरा खा गया, ऐसी हम लोग जैसे खाते ऐसे खा गए। तो पहले से ही रघुनंदन के बारे में जो जानते थे, तो उनकी मन में फिर भी डाउट हुआ, फिर भी उन्होंने दूसरी बार कैसे खाते इनकी प्रेम में तो देखना चाहिए। तो रघुनंदन वो मुकुंद जी फिर दोबारा बोल दिया कि आप 2-3 दिन बाद में, बोला आप भी फिर दोबारा सेवा करना। तो फिर सेवा, बोला मेरा दूसरा कार्य में जाना है। तो ऐसे मुकुंद थोड़ा घूमने चले गए, और उनको पूजा करने के लिए दिया। दूसरे दिन पूजा करके उन्होंने जब भोग लगाया, मुकुंद के पीछे उधर से छिप के रहा और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भाई प्रभु खाइए खाइए। और एक बार भगवान खाया, अभी फिर दोबारा नहीं खा रहा, एक समस्या है। वो फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर एक दिन खाया, क्यों नहीं खा रहे हो, क्या हो गया आज? तो ऐसे करते करते बहुत जब जीत पकड़ लिया, तभी फिर दोबारा जब खा ही रहे थे इसी समय खाते खाते जब एक लाड्डू की आधा खाया, तो उसी समय मुकुंदो आ गया। जब भी आ गया तो ठाकुर जी ने तुरंत उस लड्डू को रखा और जैसे गोपीनाथ जी खड़े हैं ऐसे खड़े हो गए। तुरंत मुकुंदो आया, प्रेम में गदगद होकर अपने रघुनंदन को गोद में ले लिए और प्रभु को बहुत ही स्तुति आदि किए हैं। तो देखा कि रघुनंदन के प्रेम में वश होकर प्रभु ने मनुष्य जैसे खाते हैं, तो यही भक्ति की उनकी प्रेम है, प्रेम के वश कर दिया। कोई बड़े चरे नहीं है, बहुत बड़े हो गया, बहुत साधन किया, कुछ नहीं। तो ऐसे ही रघुनंदन ठाकुर जी की सेवा में नियुक्त हुए, सेवा करते रहे, दोनों प्रचार अधिकारियों धीरे धीरे करते रहे। 8 साल की आयु में चल चल के बंगाल से 600 किलोमीटर जेठ महीने की गर्मी में चले गए महापुरुष से मिलने के लिए। मैं भी जाऊंगा। रघुनंदन नरहरिल हर साल जाते थे, इस साल 8 साल जब आयु हुआ बोला मैं भी जाऊंगा। जाके मिला महाप्रभु जी, मुकुंद दास से पूछो, मुकुंद दास पूछे सचिर नंदन तुम्हें पिता पुत्र तुमार श्री रघुनंदन किबा रघुनंदन तनय तुम किबा रघुनंदन पिता तुम्हें ताहार तनय निश्चित करिया कह जाओ को संशय। मुकुंद दास से सचिनंदन गौरहरि ने पूछा कि ये बताओ कि तुम पिता हो रघुनंदन पुत्र है या रघुनंदन पिता तुम पुत्र हो, निश्चित करके बताओ, तो मेरी मन में संशय हो रहा है। इसलिए भक्ति जो होते हैं ना आयु से, ना जाति से, ना लिंग से कोई भेद नहीं है। जय भजे शैव अभक्ति हीन छार, कृष्ण भजन ना ही जाति कुल आदि आयु कोई विचार नहीं है। जो भजे अभक्त हीन छार, तो जो भजन करेगा वही बड़े। तो इसलिए महाप्रभु ने पूछ दिया, देखते सबको ही देख रहे हैं कि ये 8 साल की बच्चा है और 50 साल की है, 50, 52, 54 की है। तो ये पूछ रहे लगभग दादाजी, क्योंकि वो बहुत उम्र में ज़्यादा बहुत बड़े थे मुकुंद, शादी करने का लायक नहीं, 40-42 साल हो गया था उनको, उसी समय शादी किए। तो पूछे महाप्रभु, ऐसे प्रश्न पूछते, बोला मुझे संशय हो रहा है, मेरे मन में भ्रम हो रहा है कि कौन पिता है इसमें, रघुनंदन पिता या मुकुंद पिता। तो भक्त भी चतुर होते हैं, भक्त भी भगवान की ये समझ जाते हैं। तो उन्होंने बताया, मुकुंद ने बताया कि रघुनंदन मेरा पिताजी है, मैं उनका पुत्र, ये मेरा निश्चय है। आमा सभा कृष्ण भक्ति रघुनंदन होते, अतएव रघुनंदन पिता हमारो निश्चित। तो हम लोगों को जो कृष्ण भक्ति है ये रघुनंदन से है, इसलिए रघुनंदन मेरा पिता है और मैं उनका पुत्र हूँ। आजकल जो कॉलेज पिचिंग करते हैं ना, इसमें भी ऐसे ही होता है लगभग, बहुत जगह हजारों केस होंगे ऐसे, जो पुत्र बहुत बड़ा चारा होते हैं, पिताजी को शिक्षा देते हैं, पिताजी ऐसे जप करना चाहिए, ऐसे है ये, ऐसे नहीं करना, ये ऐसे खाना नहीं, ऐसे पीना नहीं, तो ऐसे सिखाते। इसी प्रकार ये कृष्ण भक्ति में आगे है, तो इसलिए वही गुरु जो कृष्ण भक्ति में बड़े हैं वही गुरु है, वही पिता है। जहाँ भी तो कृष्ण भक्ति से ही गुरु है, जिससे कृष्ण भक्ति प्राप्त वही गुरु है, भले वो कैसे जाति का हो, वो कैसे शरीर का हो। जैसे हनुमान जी है मानव शरीर में, गीद वो जो जटायु है गीद शरीर में है, काकभूषणी काक शरीर में है, तो इसलिए भक्ति की जो है ऐसे जाति एवं आयु नहीं गिना जाता है, कुल भी नहीं गिना जाता है। तो इसलिए उन्होंने बताया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आपने ठीक हो, जहाँ जिससे कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है वही गुरु होते हैं। तो भक्त लोगों को मुकुंद के बारे में बता रहे थे कि इनका निगुर निर्मल प्रेम जैसे शुद्ध है। निर्मल निर्मल प्रेम क्या है? निर्मल प्रेम जिस प्रेम में भगवान के सुख के लिए वासना, जो भी हम कार्य करें, जो भी हम जी रहे हैं, केवल भगवान ठाकुर जी के सुख विदान करना है, अपने ससुख अपने भोगनी एक बिंदु भी इच्छा नहीं है, केवल ठाकुर जी के आनंद विधान के लिए हम जो भी हमारा सारे कार्य है, इसको बोलता है निर्मल निगुर प्रेम। जिस प्रेम में जैसे शुद्ध है एकदम सत, जो 24 कैरेट की जो सोना है गोल्ड है, जिसमें कुछ भी खाद नहीं है, मिक्स नहीं है। मिक्स क्या है? हम लोगों को अलग अलग जो इच्छा है यही खाद है सोने में गोल्ड में। तो ये हमारा भक्ति में यही बाधा है, यही मिक्स है भक्ति में। सारे जो भी वासना है सभी वासना को त्याग करके केवल भगवान के सुख विधान की वासना ही रहना है, इसको बोलता है शुद्ध हेम निगुर प्रेम, निर्मल प्रेम, जिस प्रेम में कोई मल नहीं है। यही वासना आदि जो है यही मल है, अपने भोगों का जो वासना है यही इसको बोलते हैं मल। तो निर्मल प्रेम निगुर प्रेम जैसे एकदम प्योर गोल्ड है, प्योर सोना शुद्ध सोना है, तो ऐसे मुकुंद की प्रेम है। इसके बाद महाप्रभु ने एक दिन मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया, तीनों को बैठाया, तीनों को बैठाया, रघुनंदन सेवा करे कृष्ण रो मंदिरे दारे पुष्कर नितर घाटे रो ऊपर नित्य कदम दई फूटे बारो मास, नित्य दई फूल फूटे कृष्ण कृष्ण अवतंस। तो रघुनंदन सेवा करते हैं कृष्ण मंदिर में, ठाकुर जी जो अपने गोपीनाथ जी मंदिर है उनमें सेवा करते हैं, और एक जो कुंड है कुंड के पास में एक कदम के वृक्ष है, हर दिन 365 दिन दो दो फूल होते थे जो भगवान के कर्णभूषण बनाते थे। तो ये कदम फूल जो है ये सीजनल, अभी जो बारिश सीजन गर्मी के आखिरी में बारिश के शुरुआत में ये कदम होते हैं सीजन में एक बार, लेकिन इस कदम जो है ये दिव्य वृक्ष है हर दिन दो दो फूल। ऐसे कोई जगह कोई वृक्ष बंगाल में थे तो हर दिन दो फूल होते हैं, और इससे द्वारा उन्होंने सेवा करते हैं। और कृष्ण सेवा बिना यहाँ अन्न न है मन, और कृष्ण सेवा के अलावा उनके मन नहीं है। हमेशा भगवान की सेवा के लिए कैसे अच्छा से अच्छा किया जाए, कैसे अच्छे खिलाया जाए, कैसे अच्छे ड्रेसिंग किया जाए, कैसे उनकी सुख विधान किया जाए, कृष्ण सेवा कृष्ण के सुख विधान करने के अलावा उनके मन नहीं था। इसलिए तीनों को बोला, इसलिए ये रघुनंदन की सेवा है कि पुजारी सेवा करेगा, और पिचिंग सेवा दिया नरहरि सरकार को, और लाइफ मेंबरशिप में पैसा कलेक्शन करना मुकुंद, बोला आप धर्म धन उपार्जन करो, धर्म धन उपार्जन करके इस परिवार को ठाकुर जी को पालन करो। तो उनकी जो वित्तीय है उनके अनुसार जो हिसाब पैसा है तो वो हिसाब से पैसा लेके अपने संसार को मेंटेन करना है, धर्म धन उपार्जन। और नरहरि मेरे भक्त के साथ में रहेगा और प्रचार कार्य करेगा। ये तीन सेवा तीन करियो तीन जने, यही तीन सेवा महाप्रभु तीन लोगों के लिए दिया। तो जब ऐसे अभिराम ठाकुर को सुनाई दिया, अच्छा ये भगवान को लड्डू खिला दिया, अच्छा कोई अच्छे व्यक्ति होंगे, उनको था परीक्षा करने वाला कौन कैसे वैष्णव है। परीक्षा ऐसे मेडिसिन है, सिर झुका दिया किसी के सामने ठीक नहीं है तो सिर फट जाएगा उसका। तो ऐसे रघुनंदन जी के बारे में जब सुना आ गया परीक्षा करने के लिए। बाई दे भाई बंगाल में सबको प्रणाम नहीं करते थे, सबको प्रणाम करते थे बंगाल पूरा खाली हो जाता था पूरा खाली करते, लेकिन देख देख के किसी किसी को प्रणाम करते थे तो वो ठीक है तो ठीक नहीं तो हजार हजार विग्रहों को विग्रह चला गया चूर चूर हो गया। तो रघुनंदन आ गया श्रीखंड में मुकुंद के घर, तो पूछा आपके बेटा मुकुंद भी सुना तो तुरंत बेटा को छुपा के घर पे लग कर दिया और बाहर वो बैठे थे एक कमरे में तुरंत छुपा दिया और बताया। पूछा जब आपके बेटा रघुनंदन क्या कहाँ है, ये तो बहुत अच्छे प्रभावशाली है, मैं तो दर्शन करना चाहता हूँ। तो मुकुंद ने तुरंत झूठ बोल दिया, बोलो मामा के घर चला मामा जी के घर गया। अरे बड़े मेरी मन में इच्छा था उनसे मिलने के लिए, मामा घर गया अभी ऐसे कुछ समय बैठे और बैठ के उस डेढ़ किलोमीटर दूर जहाँ पे है बरडंगा, बरडंगा में बरगद के बीच वृक्ष के नीचे आके बैठा। इसी समय रघुनंदन पीछे दरवाजा खोल के आ गया और जब रघुनंदन आया तो उन्होंने देखा दंडवत किया, उठ के देखता है अच्छा कुछ नहीं हुआ, एक दो तीन बार परीक्षा किया, तीन बार परीक्षा करने के बाद टिक गया कुछ नहीं हुआ। तब उनको आलिंगन किया और दोनों नृत्य किया, नृत्य करते 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 उनके जो पायल थे पायल निकाल के गिर निकाल के अकाई हाट 15-20 किलोमीटर दूर जाके अभी भी है नूपुर कुंड, बंगला में पायल को नूपुर बोलते हैं, अभी भी अकाई हाट में कुंड है जहाँ पे जाके उनकी पायल गिरा था रघुनंदन जी की। तो ये उनकी परीक्षा में भी पास हो गए, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दे दिया। तो इस प्रकार रघुनंदन जी प्रचार कार्यों श्रीनिवास आचार्यों और इनको बहुत ही प्रचार कार्यों में हेल्प करते थे। जैसे नरहरि सरकार जब चला गया उनके तिरुभाव तिथि महोत्सव एकादशी में चले गए, लेकिन एकादशी में जब जाते हैं द्वादशी का उनके उत्सव मनाएं, दूसरा एक साल के बाद जब उन्होंने द्वादशी के दिन उन्होंने भोग लगाया रघुनंदन उनकी कुटिया में जाकर उनके आसन नरहरि सटकर के आसन को लगा दिए और भोग लगाए, तो महाप्रसाद लाके भोग लगाया और बाहर गए। बाहर जाके मंत्र आदि पढ़ के जब दरवाजा खोला देखते उसी आसन में नरहरि सरकार बैठ के प्रसाद सेवन कर रहे हैं। तो ऐसे शक्ति संपन्न कार्य हमेशा करते थे। इसके बाद जब प्रचार कार्य शादी गृहस्थ भी थे, गृहस्थ थे उनके कानाई उनके बड़े बेटे थे और समय आ गया। एक बार श्रीनिवास आचार्यों नरोत्तम ठाकुर से मिलने के लिए खेतरी में जाने के लिए श्रीखंड में आए, उनके साथ सत्संग करने के बाद उनसे प्रार्थना की, आज्ञा मांगा कि मैं पहले ऐसे बहुत सारे यह है कि कोई कुछ जाते थे बड़े श्रेष्ठ वैष्णव से आज्ञा लेके जाते थे कि मैं अमुक जगह जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनके गांव है जाजीग्राम, ज़्यादा दूर नहीं, जाजीग्राम से श्रीखंड 2-2.5-3 किलोमीटर होगा, तो उन्होंने जाके आज्ञा मांगा, मांगने के लिए बताया कि मैं खेतरी में जाऊँगा थोड़ा नरोत्तम ठाकुर से नरोत्तम दास ठाकुर से मिलना है। तो बोला ठीक है अब जाओ जल्दी जल्दी आ जाना। तो श्रीनिवास आचार्य गए खेतरी में, जाकर उनके मन में एक ही बात खटक रहा था, कभी ठाकुर जी नहीं बताते हैं कि जल्दी वापस आने के लिए इस बार क्यों बताया कि जल्दी आना है। तो कुछ दिन बाद जल्दी जल्दी लौट के आए, आने के बाद फिर जाजीग्राम से एक दो दिन बाद गए, उन्हें रघुनंदन ठाकुर से मिला। मिलने के बाद एकांत में एक कमरे में बुलाया, बुला के बाद बताया कि आज के जो दिन है इस तिथि को मैं अपने शरीर को छोड़कर अपनी नित्य लीला में जाना चाहता हूँ। तो ऐसे यही साधन की बल है कि अपने हाथ में है कब हम शरीर छोड़ना है, मुझे शरीर छोड़ना है। हरिदास जी जब प्रभु आप बोलेंगे हम तो इच्छा कर दिया मैं आपको पहले जाऊंगा, तो इसी प्रकार इन्होंने भी बताया कि देखो आप संकीर्तन मंडल के आयोजन करो, कीर्तन के आयोजन करो, मैं इस चतुर्थी तिथि जो है इस तिथि का मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। श्रीनिवास आचार्य बहुत दुखी हो गए कि सबको गाइडेंस में रहते थे, बड़े प्रसिद्ध वैष्णव हैं, तो उन्होंने बहुत दुखी होने के बाद जो ठाकुर की आज्ञा है रघुनंदन ठाकुर की, उन्होंने महासंकीर्तन की समारोह किया है। 3 दिन तक संकीर्तन समारोह चलते रहे महासंकीर्तन। तो 4th दिन जो आज के दिन है अपने कुल देवता जो है गोपीनाथ और नरहरि के प्राण गौर नरहरि सरकार के प्राण गौर है, उनके एक शिष्य थे। उनको शिष्य को स्वप्न में आया कि ये जो नीम वृक्ष है इस नीम वृक्ष से महापुरुष स्वप्न में आए थे मेरे विग्रह बनाकर गुरु जी को दान कर दो। तो उन्होंने आज्ञा अपने महापुरुष की आज्ञा से उस अपने घर की नरहरि शटकर के शिष्य उनके घर के नीम वृक्ष काटे और एक कारपेंटर स्वयं साक्षात विश्वकर्मा आके उस गौरंग के श्री विग्रह को बनाया। 3 विग्रह बनाए, एक तो वह है नरहरि के प्राण गौर और दूसरा है जाके महापुरुष के सन्यास मंदिर में जहाँ सन्यास ली काटवा में वो विग्रह और एक विग्रह दूसरा कहीं पे है। तो ये विग्रह बनाए, तो ये नरहरि के प्राण गौर है, महापुरुष स्वप्न में स्वप्न देखे ही आए हैं। नहीं बोल तो ये इस दोनों की ओर नजर लगाया और सारी ओर से अपने चिंतन मन बुद्धि सब कुछ हटा लिया और ऐसे करके गौरंग का नाम स्मरण करते करते सबके सम्मुख अपने प्राण जो प्राण पखरी है भगवान की ओर करके निकाल दिए। जय श्री रघुनंदन दास ठाकुर के। ते ऐसे साधक है जो अपनी इच्छा के अनुसार अभी तो उसी अनुसार भगवान के चिंतन करके सारी ओर से मन हटा के भगवान के चरण कमल मुख कमल दर्शन करते करते अपने प्राण पकड़ी निकाल दिया। तो इसी प्रकार रघुनंदन दास ठाकुर की है। बंशीदास बाबा जी जो है एक अद्भुत वैष्णव है, केवल कपिन धारण करते थे, मयमंग सिंह में उनका जन्म हुआ है और शादी भी करवा दिए थे, फिर छोड़ छाड़ कर उन्हें आके नवद्वीप में रहने लगे कुटिया बना के, निताई गौर राधा कृष्ण और गोपाल जी की सेवा आदि करते थे। एक बार पुरी गए, पुरी जाते हुए बस उनको खाना पीना भी कोई नहात गंगा के निकट में ही रहते थे, कम नहाते थे पता नहीं, नहाता भी नहीं था, कोई देखा भी नहीं, शौच आदि जाने के लिए भी कोई नहीं देखते थे उनको। और खाना भी ऐसे नहीं है कि हर दिन 3 टाइम, जब भगवान को भोग लगाया तो खाया नहीं तो नहीं खाया, 2-3 दिन लगाया भी नहीं तो 2-3 खाया भी नहीं, ऐसे ही अद्भुत वैष्णव है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कभी कभी अपने शिष्यों को भेजते थे, जब उन्होंने प्रसाद पाते हैं उन झूठन को लाके उनको खाते थे और ज़्यादा संघ से उनको दूर भी रहने के लिए बोलते थे क्योंकि उनके आचरण को नहीं ले सकते हैं। तो जगन्नाथ पुरी गए भक्त लोग, गौरी मठ के भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे जगन्नाथ मंदिर में कीर्तन करते करते मृदंग बजा बजा के कीर्तन कर रहे थे। बाबा जी ने बताया कि खोल फाटे बुक फाटे ना, तो मतलब पता है मृदंग फटता है लेकिन छाती नहीं फटता है। कीर्तन बहुत तेजी से कीर्तन हुआ, बहुत तेजी से कीर्तन हुआ, तो बाबा जी बता रहे देखी मृदंग तो फट रहे हैं लेकिन नहीं फट रहा है, तो मतलब हृदय पिघलते नहीं है। तो इसी प्रकार बाबा जी कुछ दिन बाद फिर आ गए, लौट के आके इधर रहने लगे, इधर नवद्वीप में रहते थे। गौर नेताइकों को भी अभिषेक स्नान कराते थे, उनको बांध के गंगा जी में छोड़ देता था। बहुत समय बाद बोला नहा लो, जितना समय नहाना है नहाओ। नहाने के बाद हाथ लेके आने के समय चिल्लाते थे आ जाओ अभी समय हो गया। तो ऐसे अद्भुत वैष्णव उनके सेवा आदि करते थे, कुटिया का दरवाजा कभी नहीं लगाते थे। अलग अलग साधक की अलग अलग ये है, तो कुटिया के दरवाजा कभी नहीं लगाते थे। तो इनका कहना क्या है, ये बहुत सारे ये लोग है, नितायगुर है, राधाकृष्ण है, गोपाल जी है, ये लोग है, तो हम दरवाजा क्यों बंद करें? कोई व्यक्ति है तो दरवाजा लॉक करता है कोई? तो उन्होंने दरवाजा खोल के जाते थे। एक दिन चोर ने कुछ भी बर्तन था ले गया, तो आकर क्रोधित हो गया, दोनों को डांटने लगा, क्या हुआ देखा नहीं दोनों भाई? हाँ दोनों भाई खड़े थे इधर, चोर ने ले गया, ठीक है नहीं देखा, खाना मिलेगा नहीं, चलो भूखा रहना है। दोनों को खिलाए नहीं, भोग नहीं लगाया, भोग भिक्षा तो मांग के लाया, पकाया पका के उनको भोग नहीं लगाया, बोला नहीं आज भोग नहीं लगाना है। एक दो दिन बाद में कुछ बर्तन कोई दे गया, बोला अच्छा निताई का लाया, गौर नहीं लाया, तो इसलिए निताई को खाना मिलेगा गौर को नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके उन्होंने अद्भुत लीला करते थे। कभी कभी बच्चे तंग करते थे, बोला जशोदा मैया को कंप्लेंट करना पड़ेगा, ये कृष्ण बहुत अभी शरणत कर ये कर रहा है, तंग कर रहा है। तो इसी प्रकार ये अभी अद्भुत वैष्णव है बंशीदास बाबा जी, और हिंदी बंगला में इनका कोई ये नहीं है, इंग्लिश में भक्ति विकास महाराज जी लिखे हैं, और हिंदी बंगला में शायद हिंदी में किया हो गया। अच्छा तो उनकी भी बहुत लंबी कथा है, परम वैष्णव हैं, उनकी आज तिरुभाव तिथि हैं। तो हम लोग इस रघुनंदन ठाकुर और वंशीदास बाबा जी से हम लोग प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा भी भक्ति भगवान के चरण कमल हमारा मति रहे। ये दोनों ही अद्भुत बात करते थे, रघुनंदन भी और वंशीदास बाबा जी भी। तो ऐसे ही हमारा मन थोड़ा भगवान के चरण कमल में लग जाए, हम लोगों को थोड़ा आशीर्वाद कर, इतना बोल के हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय श्री रघुनंदन दास ठाकुर के, जय श्री वंशीदास बाबा जी की महाराज के, जय जगतगुरु श्री प्रभुपाद के, निताय गौर के, समेत गौर भक्तवृंद के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रसाद की।